ऐसा बहुत कम ही होता है कि बीबीसी किसी शख्स की आत्मकथा लिखने का कारण बने, लेकिन मशहूर वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यन स्वामी की पत्नी रोशना स्वामी के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब इवॉल्विंग विद सुब्रमण्यन स्वामी ए रोलर कोस्टर राइड में तो किया ही है। पिछले दिनों जब वो बीबीसी स्टूडियो आई तो उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की।
2 साल से थोड़ा ज्यादा पहले मेरी बहन ने एक पुस्तक लिखी थी इमरजेंसी के बारे में। उसके बाद बीबीसी ने मुझे फोन किया और पूछा कि हम आपको भी इमरजेंसी के बारे में इंटरव्यू करने चाहते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं कोई खास इंटरव्यू नहीं देती हूँ। तो फिर मुझे याद आया एक एनेक्डोट का, जो मैंने अभी तक तब बहुत थोड़े लोग को बताया था, जो मेरे दिल में बस गया था। वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए, उनके बारे में था और मेरा अनुभव उनके साथ क्या हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगी एक शर्त पर, कि उसके बाद और इंटरव्यू के अंदर मेरा एक अनुभव आप पब्लिश कर लीजिए। पर जब वो पब्लिश हुआ था तब वो एनेक्डोट नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा कि इससे लगता है कि इसके बारे में कुछ पॉलिटिकल सेविनेस था। लोगों अपने एक्स प्रधानमंत्री के बारे में केवल अच्छी अच्छी चीज सुनने चाहते हैं। जो आदमी इस तरह का था वो नहीं बताने चाहते हैं, वे खाली अच्छी प्रशंसा करवाने चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक एनेक्डोट लिखूं। फिर लिखते समय मुझे लगा कुछ और भी चीजें हैं डॉक्टर स्वामी के बारे में जो मेरी जानकारी है, वो भी अब अच्छा टाइम है रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं लिखने लगी।
अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। पहला तो ये कि वो कहानी इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यन स्वामी के अंडरग्राउंड होने की कहानी थी, और उसमें रोशना जो कहना चाह रही थी वो मुख्य कहानी का एक छोटा हिस्सा भर था। और दूसरे ये कि आपको पता है कि हमारे पास हमेशा समय की कमी की दिक्कत तो रहती है। बहरहाल आज मौका भी है और दस्तूर भी। रोशना स्वामी आज उसका भी जिक्र करेंगी जिसे सुब्रमण्यन स्वामी पर 2 साल पहले की गई विवेचना में जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस पर थोड़ी देर बाद। सुब्रमण्यन स्वामी की तरफ दुनिया का ध्यान पहली बार तब गया जब उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाने माने प्रोफेसर पॉल सैमुअलसन को, जो कि ब्लैक बोर्ड पर एक कैलकुलेशन कर रहे थे, बताया कि वो गलत हैं और उम्र भर के लिए वो उनके दोस्त हो गए।
स्वामी ने मुझे बताया कि हमें इंडिया में जब हम मैथमेटिक्स सीखते हैं तब बहुत थरली सीखते हैं, फॉर्मूले वगैरह तो हम डटा रहते हैं, सब कुछ समझते हैं। अमेरिकन लोग ज्यादा एनालिसिस करते हैं, पर अपना मेमोरी में ये सब रखने की जरूरत नहीं सोचते हैं। पर कोई भी इंडियन मैथमेटिक्स स्टूडेंट होता है तो वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। जब प्रोफेसर सैमुअलसन ने कुछ फॉर्मूला लिखा बोर्ड पे, स्वामी ने देखा कि ये तो सही नहीं है, और उसने प्रोफेसर सैमुअलसन को बताया कि नहीं, ये अगर ऐसा फॉर्मूला है तो इसका परिणाम ये होता है। तो सैमुअलसन ने देखा, थोड़ा अजीब लगा कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मुझे बताता है कि कैसा मैथमेटिक्स होता है। पर जब उसने देख लिया तब उसने देखा कि हाँ, उन्होंने गलत किया था। उसने करेक्ट कर लिया, स्वामी से थैंक यू बोला और उसके बाद उनके साथ मीटिंग्स होते रहे।
रोशना की स्वामी से मुलाकात अमरीका में उसी पढ़ाई के दौरान हुई। अपनी किताब में तो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमारे बहुत इसरार पर उन्होंने उन खास पलों को याद किया।
उन दिनों में डॉक्टर स्वामी ग्रेटर बोस्टन इंडियन एसोसिएशन में भाग लेते थे, और उस समय पंडित रविशंकर का एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे और स्वामी उसके लिए टिकट बेच रहे थे। और जब उसने देखा कि मैं साड़ी में थी तो उसने मुझे रोका और कहा कि मैं ये टिकट बेच रहा हूँ और आप जरूर खरीद लीजिए और आना रविशंकर के बारे में सुनने के लिए। अब मेरा ऐसा एजुकेशन था कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, और ऐसा भी एजुकेशन था कि मुझे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का थोड़ा कुछ समझ था। तो मैंने उसको बोला कि मैं हार्वर्ड नहीं आई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए, शायद मैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के लिए कोई कॉन्सर्ट हो तो मैं जाऊंगी। तो उसने खुद मेरे लिए टिकट रविशंकर के कॉन्सर्ट के लिए दिए और मुझे बॉस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, और वो बहुत महंगे होते हैं, बॉस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के एक परफॉर्मेंस के टिकट भी लिए और उन्होंने मुझे दोनों फंक्शंस के लिए इन्वाइट किया। इसी तरह हमारी मीटिंग हुई।
रोक्षना ने स्वामी से अमेरिका में ही विवाह किया। उनकी सिविल मैरिज हुई क्योंकि रोक्षना पारसी हैं और उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनका हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो। पढ़ाई के बाद ये दोनों भारत लौटे और सुब्रमण्यन स्वामी IIT में अर्थशास्त्र पढ़ाने लगे। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और वो भारतीय जनसंघ के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो सुब्रमण्यन स्वामी अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने और नानाजी देशमुख ने महीनों तक तत्कालीन सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गतिविधियों का संचालन किया। सुब्रमण्यन स्वामी याद करते हैं,
नानाजी के साथ ठहरते समय हम संगठन बना रहे थे तो नानाजी को तो ड्राइवर रख नहीं सकते थे क्योंकि ड्राइवर के बारे क्या भरोसा है, तो मैं गाड़ी चलाता था। लेकिन नानाजी अचानक एक दिन मुझे किसी काम से भेजा और वो खुद पकड़े गए। उस समय माधवराव जी ने कहा, आप गुजरात चले जाइए, वहाँ हमारी सरकार है, कोई पकड़ नहीं सकते, या पकड़ने के लिए कोई सेंट्रल पुलिस भी आएगी तो बता देंगे। उन्होंने कहा कि आप मणिनगर रेलवे स्टेशन में उतरना है, हमें अंडरग्राउंड का जो एक नंबर दिया उन्होंने उसमें बता दो और आपको रिसीव करने के लिए प्रचारक आएगा। तो वो प्रचारक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन आए और वो उन्होंने हमें सहयोग किया और हमें गाड़ी में ले गए। मकरंद देसाई के नाम पर एक मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर, जो जनता मोर्चा की सरकार थी।
कुछ दिनों बाद इमरजेंसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए स्वामी अमरीका चले गए। उन दिनों, बल्कि आज भी कानून है कि कोई भी सांसद बिना अनुमति के 6 महीने से अधिक संसद से अनुपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए स्वामी ने भारत वापस लौटने का फैसला किया।
मुझे ये जचा कि मैं बैंकॉक के लिए टिकट खरीदूं, दिल्ली के लिए जो टिकट खरीदे उन्हीं का नाम होगा मैनिफेस्ट में, जो बैंकॉक में है वो ट्रांजिट पैसेंजर है उसका नाम नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बैंकॉक के लिए टिकट खरीदा। तो मैं जब उतरा दिल्ली तब मेरे पास कोई लगेज नहीं थी, मेरे पास सिर्फ राज्यसभा का जो लाल पास होता है ID, वो था मेरे पॉकेट में। 3 बजे सुबह, आधा लोग तो सोए हुए हैं ऐसे, तो एक ही पुलिस सब इंस्पेक्टर था, इमिग्रेशन में बैठा था, तो मैंने ये पास निकाल के उसको दिखाया, उसने मुझे सलूट किया। जब बाहर निकला तो मैं टैक्सी में बैठकर, एक होटल है राजदूत, उसमें जाकर मैंने अपना एंट्री किया। मैंने पत्नी को अंडरग्राउंड से भेजा था मैसेज कि आपको मैं फ़ोन करूँगा लेकिन मैं अंग्रेज की एक्सेंट में बोलूँगा और कहूँगा कि मैं आया हूँ लंदन से और आपके मौसी ने आपको प्रेजेंट भेजा, उस प्रेजेंट के लिए आप अपना बैग लेकर आइए, थोड़ी भारी चीज़ है। तो वो मैसेज ये था उसमें असली, कि मेरा जो बनाई हुई पगड़ी है और बनावटी दाढ़ी है और वेस्टर्न क्लोथ्स बुशर्ट पैंट, वो आप लेकर होटल आइए। तो मैंने कहा आज शाम को 5 बजे मैं घर आऊँगा और दरवाज़ा खटखटाऊंगा, तो आप जब दरवाज़ा खोलेंगे मैं पूछूंगा कि आपका टेलीविज़न ख़राब है क्या, और आपका ये हाँ हाँ आइए अंदर। तो मैं आया 7:15 बजे, दरवाज़ा खुलवाया तो मैंने कहा टेलीविज़न ख़राब है, उन्होंने कहा हाँ अंदर आइए, तो अंदर गया। 5 दिन मैंने अपने घर में बीता।
10 अगस्त 1976 को स्वामी ने तय किया कि वो संसद भवन जाएंगे और राज्यसभा के उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करेंगे।
उन दिनों में पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती थी तो सीधा गेट तक आपकी गाड़ी जाती थी, तो मैंने कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को फेस करने वाली गेट है वहाँ तक मैं जाकर पार्क करूँगा, अंदर जाऊँगा, 1 मिनट का भाषण करके मैं आ जाऊँगा और यदि मैं सफल होऊंगा तो मैं गाड़ी को ले जाऊँगा बिरला मंदिर, वहाँ मैं मैट के नीचे चाबी रख दूँगा और कपड़े को बदल दूँगा और टैक्सी से मैं रेलवे स्टेशन चले जाऊँगा। अंदर गया तो रजिस्टर थी, उसमें मैंने दस्तखत किया तो घोड़े मुरारी आए और रास्ते में मैंने इंद्रजीत गुप्ता को देखा। मैंने, इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने कहा कि संजय गांधी तो अच्छी बातें बोल रहा है आजकल, और फिर मैं अंदर गया। और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि उस समय पहला दिन था तो शोक प्रस्ताव चल रहा था, तो उसमें 7 नाम थे और ये आखिरी नाम पड़ रहा था जट्टी, तो मैं खड़ा हुआ, यस मिस्टर चेयरमैन ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और ये सब मुझे देख रहे हैं जैसे कोई भूत आ गया। तो मैंने कहा कि इंटरिम सेशन, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो उसका नाम तो आपने छोड़ दिया, तो मेरा सजेशन है कि इसको भी जोड़ा जाए। ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता नहीं है। और कहा कि सब अब दो मिनट के लिए खड़े हो जाए। तो मैंने कहा मैन आई एम वॉकिंग आउट, तो मैं गाड़ी में बैठ के गया बिरला मंदिर पार्किंग लॉट।
स्वामी ने दिल्ली स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और मथुरा पहुंचकर अपनी पत्नी को कोड लैंग्वेज में तार किया बुक पब्लिश्ड।
हमने पहले से तय किया कि अगर वो पार्लियामेंट में से निकल सकता है और पुलिस चेस नहीं होगी तो वो गाड़ी ड्राइव कर लेगा बिरला मंदिर को, बिरला मंदिर के पार्किंग लॉट में छोड़ देगा, चावी उधर मैट के नीचे छोड़ देगा और वो खुद चले जाएगा। ऐसे ही हुआ। 10 अगस्त को ये सब नेता लोग गांधी टोपी कुर्ता पजामा पहन के स्टेशन में बहुत से लोग थे जो वापस अपनी गाड़ियां के लिए रुक रहे थे। स्वामी को देख के उन्होंने सोचा कि ये भी एक दूसरा नेता होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। वो मथुरा की एक गाड़ी में बैठ गया ऊपर की सीट में। जब गाड़ी शुरू हुई तब वो टिकट कंडक्टर ने पूछा टिकट के लिए, उसने अपना रेलवे पास बताया, टिकट कलेक्टर ने सल्यूट करके चले गया। अब हमने तय किया था उसी तरह से मथुरा में। उसने एक टेलीग्राम मुझे भेजा बुक पब्लिश्ड, उससे मुझे मालूम पड़ा कि वो यहाँ तक पहुँच गया है।
इस बीच जैसे ही सरकार को पता चला कि स्वामी बच निकले हैं, उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। रोक्षना स्वामी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर की तलाशी ली गई, उनकी कारें और सारा सामान जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि जब वो लॉ क्लासेस अटेंड करने के लिए बस से दिल्ली विश्वविद्यालय जाती तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी उस बस तक का पीछा करती। रोक्षना मदद के लिए उस समय भारतीय जनसंघ के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के पास गई, लेकिन वहां से उन्हें निराश लौटना पड़ा।
हमने सोचा कि ये पार्लियामेंट से एक्सपल्शन बिल्कुल नाजायज है और हम उसके बारे में रिट पिटिशन फाइल करने वाले थे। तो मैं गई थी अप्पा घटाटे के पास। अप्पा घटाटे हमारा वकील का काम जनसंघ के लिए करता था और अप्पा ने मुझे बताया कि वाजपेयी ने कहा है कि ये बिल्कुल छूना मत, डॉक्टर स्वामी से हमारा कोई संबंध नहीं होगा रिट पिटिशन में। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। तो मैं गई वाजपेयी से मिलने के लिए। वो तो आराम से अपने फिरोशा रोड घर में रहते थे, उनकी फॉस्टर डॉटर की फैमिली भी वहां रहती थी। तो वाजपेयी ने मुझे कहा कि हाँ डॉक्टर स्वामी ने जो रॉन्ग डूइंग किया है उससे हमारा जनसंघ को बहुत बदनाम किया है, हम उसके साथ बिल्कुल नहीं मिलने चाहते हैं। तो मैंने बोला कि क्या रॉन्ग डूइंग किया। तो उसने बताया कि आपको जानते हैं उनके करप्शन का केस है। अब डॉक्टर स्वामी 25 के बाद तो पार्लियामेंट गए ही नहीं, पर वो आए थे बेंगलोर से दिल्ली वहां हाजिर होने के लिए। और रूल था कि अगर आप आने वाले हैं तो ये दिन का क्लेम कर सकते हैं। वो फॉर्म जो भरते हैं मैंने भर लिया, डॉक्टर स्वामी ने साइन किया था, हमने वो 3 का डीए क्लेम किया था। अब वाजपेयी तो बहुत नाराज हो गए, वो कहते हैं 3 का झूठा क्लेम किया था डीए डीए, ये तो करप्शन है। मुझे तो बहुत खराब लगा।
मैंने रोक्षना से पूछा कि स्वामी और वाजपेयी के बीच ऐसा क्या हुआ कि उनमें कभी बनी नहीं।
वाजपेयी मेरे हिसाब से एक बहुत जेलस आदमी था, कोई भी दूसरे जन को ऊपर नहीं आने देता था। केवल स्वामी नहीं, बहुत से लोग हैं, उनको भी दबा के रखता था। यहाँ तक कि जब अंत में बीजेपी बन गई ना, उस टाइम वाजपेयी सबसे महान नेता था बीजेपी के, और उन्होंने आरएसएस को शर्त किया था कि ये लोग को किसी भी तरह बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। केवल स्वामी नहीं, जैसे नानाजी देशमुख, वो हमारे जनसंघ के ट्रेजरर थे, वो जितना काम करते थे आप समझते नहीं है, पूरा भारत का दौरा करते रहते थे, लोगों से मिलते थे, काम करते थे, पर वाजपेयी के चमचा नहीं थे। वो तो वाजपेयी से ऊंचे थे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी और काम, पर उनके बारे में भी वाजपेयी ने शर्त किया आरएसएस को कि अगर मैं ये नई पार्टी को चलाने वाला हूँ तो नानाजी का कोई रोल इस पार्टी में नहीं हो सकता है। दूसरा आदमी दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली भारतीय मजदूर संघ, हमारा लेबर यूनियन को बनाया और बढ़ाया, उनको भी वाजपेयी ने कहा कि ऐसा आदमी हमें बीजेपी में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने ये मान लिया, वो दिल्ली छोड़े और छोटे मोटे गांव में काम करने लगे और अच्छा काम भी किया।
ये दुश्मनी इस हद तक गई कि जब 1998 में जयललिता ने वाजपेयी सरकार को समर्थन जारी रखने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी को वित्त मंत्री बनाए जाने की शर्त रखी तो उन्होंने उसे मानने के बजाय सरकार गिराए जाना बेहतर समझा। स्वामी की राजनीतिक जिंदगी में न तो कोई स्थायी दोस्त था और न ही स्थायी दुश्मन। एक जमाने में बहुत करीबी रही जयललिता उनकी दुश्मन बन गई और एक जमाने में उनको गिरफ्तार कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उनके सबसे नजदीकी दोस्त बन गए।
इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी का सरकार था उस टाइम लोगों इंदिरा गांधी को जेल भेजने चाहते थे। उन्होंने राजीव गांधी के भी बारे में कहा कि उनका प्रोसिक्यूशन करना चाहिए और डॉक्टर स्वामी ने पार्लियामेंट में बोला कि नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं है, उसका कोई ब्लेम नहीं था, आप कैसे उसके बारे में कर सकते।
रिहान फजल, बीबीसी दिल्ली।